31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے. وہ کیوں آیا ہے؟ پچھلی آیت کی کنٹینویشن ہے. وہاں مردوں کی بات پہلے کر کے بتا دیا، اب عورتوں کی بات ہے. اکٹھا بھی تو کیا جا سکتا تھا نا، کیوں نہیں کیا؟ نمبر ایک، اس وجہ سے کہ اہمیت کا احساس ہو کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے عورتوں اور مردوں کو الگ الگ ایڈریس کیا گیا. اور دوسری اس کی وجہ یہ کہ عورتوں اور مردوں کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات، یغدتن من ابصارہن، اپنی نظروں میں سے جھکا لیں. پہلے کیا تھا، یغد من ابصارہن، اور اب کیا ہے، عورتیں. بالکل وہی چیز رسے بسر کے جو مردوں کے لیے، ارادے سے عورت کو نہ تو غیر مردوں کو دیکھنا ہے، نہ فحش مناظر دیکھنے، اور شہوت والی نظر دوسری عورتوں پر بھی نہیں ڈالنی. تینوں وہی چیزیں جو مرد کی تھی وہ عورت کے لیے بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اب یہاں ایک حدیث ساتھ ہی سن لیجئے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں ابن مکتوم آ گئے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ ان سے پردہ کرو. بیویوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے. تو فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا تھا جب پردے کا حکم آ چکا تھا. احمد ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، اور موطا میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، وہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو جواب میں ام المومنین نے فرمایا، میں تو اس کو دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. یعنی عورت اس طرح بھی بچے گی. اب اس کے برعکس ایک اور روایت آتی ہے کہ سن 7 ہجری میں حبشیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا، اور اس نے مسجد نبی کے احاطے میں ایک تماشا کیا، اور اللہ کے نبی نے یہ منظر حضرت عائشہ کو خود دکھایا کہ وہ آپ کے کندھے پہ ہنسا رکھ کے دیکھ رہی تھی. یہ بخاری مسلم اور احمد کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا مرد کو، ادھر بتایا کہ نابینا تھی اس کو نہیں دیکھنا تھا. اسی طرح سے ایک تیسری روایت بھی آتی ہے جس میں فاطمہ بنت قیس ہیں، ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی. اب سوال یہ تھا کہ یہ عدت کہاں گزاریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام شریق انصاریہ کے پاس چلے جاؤ. پھر فرمایا کہ نہیں، ان کے پاس تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ مالدار عورت تھیں، فیاض تھیں، کثرت سے لوگ ان کے مہمان بنتے تھے، خدمت کرتی تھی. کہا تم ابن مکتوم کے پاس چلی جاؤ، وہ اندھے آدمی ہے، تم ان کے ہاں بے تکلف رہو گی. مسلم کی روایت ہے. اب یہ ساری چیزوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ یغدتن من ابصارہن کو ساتھ ہی سمجھ کے آگے چلیں گے. تو اس کے بارے میں آپ بہترین جو اس کا جواب ہے وہ کیا ہے، کہ یہ سب کچھ ڈپینڈ آن دا کنڈیشنز ہے. ابھی اسی ٹرپ میں یہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ایک عالم ہی کے زبان سے میں نے سنا کہ یہ جو یغدتن من ابصارہن، وہ کہتا ہے یہ من جو ہے یہ تعویذ کا نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے، تفسیری ہے. تو انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ دیکھ ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ وہی بات جیسے مردوں میں ہے کہ نظر پڑ گئی تو پیچھے ہٹ جائے. ضرورت کے تحت دیکھنا، یعنی جیسے آمنے سامنے بیٹھ بٹھا کر ایک دوسرے سے بات کر لینا، ایک دوسرے کو دیکھ دکھا لینا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو جب عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو بات بالکل وہی ہے. عملی طور پہ دیکھیں تو مرد کو عورت کب دیکھتی ہے؟ نمبر ایک، محرم ہے، گھر کے لوگ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھنے میں پھر فرق ہوگا کہ نظریں بھی تو کئی قسم کی ہوتی ہیں. شوہر کو عورت کسی بھی معاملے میں کسی بھی حال میں دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فحش گندی چیزوں کو عورتیں نہیں دیکھیں گی. رہ گئی بات کہ اب عورت بغیر شہوت والی نظروں کے کیا مرد کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی، جس میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تعلیم کے لیے استاد کو دیکھنا، امام کو دیکھنا، اس کی اتباع کر رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ڈرائیور کو دیکھنا، چوکی دار کو دیکھنا تاکہ ان سے کام لے سکیں، کروا سکیں. تو اس میں وہی بات آ جائے گی، فتق اللہ مستطعتم. میں تو ساری باتوں کو دوبارہ، میں نے جتنا بھی گہرائی سے میں اس کو دیکھ سکتی تھی میں نے دیکھا. مجھے تو یہی لگتا ہے ہر عورت کے حالات فرق ہوتے ہیں، ہر عورت کا معاملہ فرق ہے. یہ بات بلکہ اگلے موضوعات میں بھی سمجھ لیں کہ پردہ کیا جائز ہے، ابایا کیسا پہنے، اسکارف کیسا پہنے، چہرے کا پردہ. وہ فتق اللہ مستطعتم. ایک ہوتا ہے انسان کی زندگی کا ابتدائی سفر، نہیں نہیں ابھی دین کی طرف آ پائی ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ نے 8-10 سال کی عمر میں پردہ شروع کیا، ابھی आप भी बच्ची हैं, आपकी उम्र ऐसी है अभी खेलने खाने की है, या आप किसी ऐसे अल्ट्रा मॉड माहौल में हैं, ऐसा शौहर की बीवी है कि जिनके नज़र में दीन भी कुछ नहीं है, तदरीजन थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ों को तय करते करते गुड बेटर दी बेस्ट पे आना होगा। ये तो है इस्लाम का मिजाज। लेकिन अगर आपके हालात मुवाफिक हैं, आपका सोसाइटी में क्या मामला है, किस दर्जे की है, तो उसके लिए फिर आपको वो काम सूट नहीं करते जो आम लोगों को सूट करते हैं। ठीक है, औरत देखेगी मर्द को लेकिन आंखों में आंखें डाल के नहीं देखेगी, पटर पटर नहीं देखेगी, अपने आप को चेहरे को निकाब में छुपा कर आंखें खोल कर मर्द के बिल्कुल सामने खड़े होकर बिल्कुल उसको डायरेक्ट इस तरह नहीं देखेगी, इससे खराबी पैदा होती है। खैर आगे चलते हैं, क्योंकि यकदुत न मिन अबसारी हिन्ना के बाद व यकफस न फुरूजा हन्ना, सेम हुक्म है ना अभी तक, औरतें भी शर्मगाह की हिफाजत करें, वही सेम अहकामात मर्दों के लिए जो थे वो औरतों के लिए आ गए, कि अपनी शर्मगाहों को छुपाएंगी भी और उसकी हिफाजत भी करेंगी। मर्दों में चूके जाहिर कोई खूबसूरती ऐसी नहीं होती जिसको आप डेलिकेसी कह सकती हैं, ब्यूटी कह सकते हैं, सॉफ्टनेस कह सकते हैं, तो अल्लाह ने मर्दों को यहाँ पे रोक के कह दिया बस यही दो काम कर लो, तो जालिका इसका लहूँ। औरतों में बस एक एक्सेप्शन ज़्यादा है, आप कह सकते हैं मर्द भी पर्दा करेगा औरत भी करेगी, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि औरत में चूंकि खूबसूरती है, औरत के अंदर नज़ाकत है, अट्रैक्शन है, औरत जैसी भी हो उसमें फिर भी कशिश होती है, तो जब औरत के अंदर कशिश है तो अल्लाह सुब्हान तआला तीसरा हुक्म दे देते हैं वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और ना जाहिर करें अपनी जीनत को इल्ला मा ज़हर मिन्हा, हाँ मगर जो खुद जाहिर हो जाए उसमें से। यहाँ पर रुक जाएं, बस अगला मसला लग गया, इस पे अब सारा लफ्ज़ पर्दे का घूमता है, औरत अपनी जीनत का इजहार नहीं करेगी। देखिए लफ्ज़ है मा ज़हर मिन्हा, इसका मानी क्या होता है, ज़ाहरा का वो जाहिर हो गया, आप इसके साथ अलिफ लगा लें, ये छोटा सा ग्रामर का नुक्ता है, मा अज़हर मिन्हा तो मानी क्या हो जाएगा, जो उसने खुद जाहिर किया, यहाँ क्या है ज़हर मिन्हा, जो कोशिश के बावजूद भी नहीं छुपता, ये नहीं कहा कि औरत खुद पहले आराइश करे, ज़िबाइश करे, नुमाइश करे और ख़ुद जाहिर करे फिर कह दे ये तो मैं छुपा नहीं सकती क्योंकि ये मेरा अबाया है, ये मेरे स्काफ़ हैं, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरी मेहंदी है, ये वो है। अब ये माँ ज़ाहरा मिन्हा में जो बात है वो क्या है, जीनत की। थोड़ा सा लफ्ज़ जीनत को समझ लेते हैं, आप जीनत किसको कहते हैं, जेब व जीनत सजाना, कपड़े पहनने को आप क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े पहने, फिर मेकअप कराने कहाँ जाते हैं, पार्लर में, मेकअप क्या है, जीनत है। कपड़े आम घर के रोज़मर्रा के पहनने में सीधे साधे, उस पे मोती बेल सिलमा चिमकी लगा ली तो ये जीनत है। फिर आप देखिए कि ज्वेलरी क्या है, जीनत के लिए पहनते हैं ना, खुशबू क्या है, जीनत है, हर वो चीज़ जिसमें कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो जीनत है। अब अगर आप औरत के जिस्म से पहले शुरू करें बात को, जीनत से क्या मुराद है, तो सबसे पहले तो औरत का अपना जिस्म ही जीनत है, अल्लाह ने औरत के अंदर हुसन रखा है और कहते हैं कि शैतान ने उसके अंदर अट्रैक्शन डाल दी है। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि जब एक औरत सामने से आ रही होती है ना, इमेजिन करें ना मर्द खड़ा है और औरत आ रही है, तो शैतान उसके ये माथे पे बैठ जाता है और मर्द को कहता है इसके चेहरे को देखो, जब भी कोई औरत आएगी ना सबसे पहले नज़र उसके चेहरे पर जाती है, ये अलग बात है कि बाद में फिगर पर जाए, और कहते हैं कि जब कोई औरत जा रही होती है वापस तो शैतान उसके हिप्स पे बैठ के कहता है मुझे देखो। और आप ये आप औरतों में भी देख लीजिए, कोई सिस्टर आती है तो चेहरे पे नज़र पड़ती है, जाती है तो हिप्स पे आती है, तो फिर अगर उसको हम इतना टाइट रखें और ऐसे कपड़े पहने के जिससे हमारे फिगर इतने खुलें तो क्या हम अच्छे लगते होंगे। और ये जब मैंने पहली दफ़ा कॉल पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि कितनी बड़ी सच्चाई है। अब इसके बाद आप देखिए कि औरत के जिस्म के अंदर वो चीज़ें जो कि औरत के तो हाथों में भी खूबसूरती है, औरत के तो पाँव की उंगलियों में भी खूबसूरती है, औरत के चेहरे में खूबसूरती क्यों ना होगी। इस एक आयत के टुकड़े पर बाज़ लोगों ने ये मुगालता देने की कोशिश की कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में औरत का चेहरा आता है, कि चेहरे का पर्दा नहीं है। आगे जाके आपको दलाइल लिखाऊंगी, मैंने दौरे कुरान में भी लिखाए थे 8-10 दलाइल आपको इस बात के लिखाए थे कि चेहरे का पर्दा कैसे है, इसलिए यहाँ मैं ज़्यादा उसको टच नहीं कर रही, क्योंकि वो आगे सूरह अल अहज़ाब में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इस सारे हुक्म को समझिए जिसकी लिस्टें आगे भी आने वाली हैं, कि अगर औरत के चेहरे को ही नहीं छुपाना, जो ज़ेनत की सबसे बड़ी इंतहा है, आप शादी करते हैं किसी लड़की के साथ अपने बेटे की, तो क्या देखते हैं लड़की का चेहरा? मेकअप होता है तो चेहरे पे होता है, इतने से चेहरे पे तो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी टिकाते हैं, कानों में टिकाते हैं, गर्दन में टिकाते हैं, सर पे टीका लगाते हैं, चेहरे के लिए लगाते हैं ना, मेकअप करवाते हैं तो इस चेहरे का कराते हैं। देखिए, किसी को आप कहते हैं फलां बड़ी खूबसूरत है, क्या आपकी मुराद होती है उससे? चेहरा होता है ना। तो जो सबसे जीनत वाली चीज़ है आप उसको एक तरफ करके, तो काले बाल जिसको आप क्राउन ग्लोरी कहते हैं उसको छुपा भी लेते हैं तो क्या कारनामा करते हैं? हैरत होती है मुझे उन सिस्टर्स के ऊपर कि कस के एक पट्टे का पट्टा सर पे स्काफ की तरह बांध लेती हैं, और उसके ऊपर भी कई किस्म के चल्ले और क्या कुछ उसके अंदर बाहर क्या कुछ उजार डाल के सजा के ये एक पूरा पटका सा सर पे डाल दिया, गर्दन भी खुली, बुंदे भी खुले, मुंह भी खुला, और हम कहते हैं पर्दा किया, और बुरा नहीं लगता? नीचे टाइट कपड़े पहने में और आप सर के ऊपर एक कपड़ा बांध दें, सच बताएं चेहरा ज़्यादा खूबसूरत होता है या बाल? चेहरा खूबसूरत होता है। हाँ, बाल चेहरे के साथ हों तो खूबसूरत लगते हैं, खाली बाल कहीं पड़े हों तो कराहत नहीं आती, खाने में बाल आ जाए तो क्या हालात होते हैं। तो लिहाजा औरत को अपनी वो ज़ेब व ज़ीनत का इजहार नहीं करना। आराइश की चीज़ें भी इसमें आती हैं, ज़ेबाइश की चीज़ें भी इसमें आती हैं, ज़ेवरात मेकअप सब कुछ नहीं करना, क्योंकि इसी से फितना बनता है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, मैमूना बिनते साद कहती हैं कि वो औरत जो रास्ता पे रास्ता होकर ना महरमों में फिरती है, वो क़यामत के रोज़ तारीकियों में होगी, अंधेरों में होगी। तो औरत के लिए भी फिर ये सब कुछ जायज़ नहीं है। बारीक लिबास, चुस्त लिबास, अंदर से छलकता वाला लिबास दुरुस्त नहीं है। हज़रत आयशा कहती हैं कि उनकी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर अल्लाह के नबी के सामने आई, वो बारीक कपड़े पहने हुई थी, तो आपने मुंह फौरन फेर लिया और कासमा जब औरत बालिग हो जाए तो जायज़ नहीं कि इसके मुंह और हाथ के सिवा इसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए, ये अबू दाऊद की रिवायत है। अब आप देखें, ये मुंह और चेहरे के सिवा और कपड़ों में आई थी, ये किसको ना दिखे? घर के मर्दों को ना दिखे। ये नहीं कहा था कि इन्हीं चमकते हुए कपड़ों में बाहर चली जाओ। इससे भी बहुत सारे लोगों ने इसको पेश करते हैं पर्दा ना होने के दलाइल में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था इसमें मुंह और हाथ की बात आती है। ठीक है, तो ये सारी वो बातें होती हैं कि ये अपनी सोच के साथ समझ आएगी। जितना आप इसके अंदर गौर व फिक्र करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको इस बात की बात समझ में आती रहेगी। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने औरतों से ये मुतालबा किया है कि वो ख़ुद को छुपाएंगी। कैसे होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एक बाद में बात जो रहेगी उसको देखेंगे। वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, पहले तो मुबारक दें उन औरतों को जिनको आज तक कुरान और हदीस से दुपट्टे के दलाइल ही नहीं मिले। उनको बता दें ये दलील है। लोग कहते हैं कहाँ लिखा है दुपट्टा कुरान में, ये ओढ़नी, ये चादर किधर है? तो देखिए, वल यद्रिबना मारो, क्या मारो? बुक्कल मारो। अरब औरतें जो थीं जाहिलियत के दौर में क्या करती थीं? वही करती थीं जिसकी अभी मैंने नक्शा कशी आपके सामने की है, कि सर के ऊपर घुमा घुमू के दुपट्टे का दुपट्टा बना के जो उसके थोड़े से पल्लू होते थे ना, कमर के पीछे डाल देती थीं। कभी आपने कश्मीरी औरतों को पुरानी तस्वीरों में देखा होगा, पूरे बाल समेट के पीछे दुपट्टा करती थी, सीना खुलता था, उस पर ही आयत उतरी थी कि नहीं, दुपट्टा है तो सर का कपड़ा, करो क्या? खुमरी इन्ना को लफ्ज़ को देख लीजिए, खमर से, खिमार कहते हैं जो छुपा ले, सर के ऊपर कपड़ा डाला जाए और जिस्म को जो छुपा ले, ढांपना, औरत का वो लिबास जो सर को छुपाए। देखिए, आप कमीज़ बोलते हैं तो जहन में क्या आता है? बदन का कपड़ा, आज़ार, ट्राउज़र, शलवार बोलें तो टांगों का कपड़ा। कभी आपने किसी को ये कहते सुना, मोज़े पाँव में पहन लो? जब कोई कहता मैं मोज़े पहन रहा हूँ तो आपके जहन में क्या आता है? पाँव में पहन रहे, मैं ग्लासेस पहन रहा हूँ, बोलें कहाँ पहने? ग्लासेस आंखों में पहने जाते हैं ना। मैं टोपी पहन रहा हूँ, मैं सॉक्स पहन रहा हूँ, मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ, खुद ही आ गया। तो खुमर क्या है? सर का कपड़ा। यहाँ ये बताया कि सर का तो पहनते ही हो, पहनती थी, बस अब इसको सीने पे डाल लो। जुयूब जैब की जमा, जेब नहीं होती वो भी इसी से है, सीने को कहते हैं, यानी इसको सीने पे रखो। अब आप देखिए, वो पहने दुपट्टा और पीछे कर दें तो आज हम स्काफ पहने और सीना खुला रहे, ये है दलील कि स्काफ भी लें तो उसको खोल के लें। हैरत होती है उन औरतों पे, और मैं खुद सोचती हूँ इरिटेशन फील होती है बाज़ दफ़ा, कभी कोई ब्रदर्स के साथ भी, कोई सिस्टर्स स्काफ में भी होती हैं, लेकिन गला भी खुला, सब कुछ भी खुला है, तो यहाँ तक दुपट्टा पतला सा होता है और नीचे से अपने जिस्म के बाहर दिख रहे होते हैं। वो इस तरह से लिया जाए जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना कि बुक्कल मार लो तो सीने के ऊपर दुपट्टा होता है। ये तो नहीं कहा ना कि अपने दुपट्टे को सिर्फ गले में डाल लो, तो जो हमने एक वो रस्सी वाला दुपट्टा एक दौर में लिया हुआ था, चुनटे डाल डाल के उसको कलप लगा के पहनते थे, वो दुपट्टा होगा। आप देखिए कि वो दुपट्टे जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी आज औरतों के किधर गए। बन भी जाएं जोड़ों के साथ फैंसी तो पहनती नहीं लड़कियां, आदत जो नहीं रही पैंट शर्ट पे जो नहीं पहनती, तो अब यहाँ क्या पहने। इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्ट की लड़कियों ने स्काफ को कबूल कर लिया, दुपट्टे को नहीं किया। आप आजमा के देख लें, क्योंकि दुपट्टा वेस्टर्न नहीं लगता। स्काफ तो हेड की शक्ल में एक चीज़ दिखती है ना, तो दुपट्टा भी लो सर पे कैसे कि उससे आपका सीना छुप जाए। इसलिए ऐसी सारी चीज़ें। अब सवाल पैदा होता है कि फिर स्काफ की बात हुई तो साथ ही कर लेते हैं, स्काफ कैसा पहने, क्या करें, कलर्ड पहने, पिंक पहने, ब्लू पहने, प्रिंटेड पहने, फूलों वाला पहने। एक असूल याद रखें, कापी में अपने नाम के साथ लिखिए मेरा स्टेटस क्या है। मैं 8-9 साल की अभी यंग बच्ची हूँ, पैदा होती भी कोई बात नहीं, आप उसको पिंक स्काफ ले दें, पर्पल ले दें, फूलों वाला ले दें, मुकेश लगी हो, स्टोन्स लगे, इट्स ओके। इस उम्र में शौक होता है, ऐसे खेलते खेलते एक दिन आएगा सादे स्काफ पे आ जाएगी, इट्स ओके गुड। दूसरी बात है कि जी आप बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न माहौल में पैदा की गई, आपके मियाँ साहब जो वो शहर के कोई MD हैं या फलां फलां हैं, उनको बड़ी शर्म आती है, और ख़ास तौर पे काले स्काफ में उनको आती है, चले आप हल्के रंगों के ले लें, थोड़ा सा लाइट ले लें, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मिजाज में रचती जाएगी बात, तो आप भी उनकी मदद कर देंगी। जिस दिन आप संजीदगी से समझ जाएंगी कि आप, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, मेरे मियाँ को इसकी केयर ही नहीं, आप सादे स्काफ पे आ जाएंगी। सीधी सी बात है, एक चीज़ जिसको छुपाने के लिए पहन रहे हैं उसके ऊपर फिर कुछ लगा लें, आप हैरत की बात है ना। तो इस पे ना तो फतवा है, देखिए आज जितनी भी ये बातें हम कर रहे हैं ना, ये फतवों की नहीं है, तकवे की बातें हैं। आप किस लेवल पे खुद को पाती हैं, अल्लाह से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक बढ़ता है तो कपड़ों पे और कपड़े पहनने को दिल चाहता है, और ताल्लुक घटता है ना तो कपड़े पहने हुए भी उठा हुए, फिर उसको भी स्टाइल से पहनेंगे, उसको भी अदाओं से पहनेंगे। चले इसकी बात की है तो अब सवाल पैदा होता है कि अपनी जीनत को छुपाना है ना, तो जीनत को छुपाने के लिए घर के कपड़ों के ऊपर एक कपड़ा पहनना होता है। इस्लाम का मिजाज बड़ा सिंपल है, मैंने और आपने जो कपड़े अभी पहने हुए हैं ना, इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है कि जब हम यहाँ से बाहर जाएं, यहाँ कोई मर्द तो नहीं आता ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त घरों में मर्द तो नहीं होते, हम यहाँ से उठ के किसी सिस्टर के घर जाते हैं तो जिस ड्राइंग रूम में वो हमें बिठाती हैं वहाँ कोई मर्द तो नहीं आता, तो इस्लाम कहता है कि वहाँ रिलैक्स रहो, अपने घर के कपड़ों में रहो, जैसे भी मौके की मुनासिबत से हल्के फुल्के पहनो, हवा ना बना लो अपने सर पर पर्दे को कि यहाँ भी स्काफ लपेटा हुआ है तो वहाँ भी स्काफ पहनना है। और हैरत में जिस वक्त होती है कि एक नया काम औरतों को मिल जाता है जब वो स्काफ पहनने लग जाती हैं, वो जोड़े ले लेके ढूंढ रही होती हैं अब इनके मैजिक स्काफ किधर है। शॉकिंग पिंक का स्काफ पहनने की आपको ज़रूरत क्या है भाई, आप औरतों में आप उतारते हैं दुपट्टा। मैं अक्सर सिस्टर से पूछती हूँ जो स्काफ करती हैं, जब पार्टियों में दावतों में होती, मैं कहती हूँ स्काफ उतार दें, आपके बंदे होंगे, आपका दिल कर रहा है अगर कोई ऐसी चीज़ है पहनने को तो पहन लीजिए, क्या हर्ज है। नहीं, अब आदत हो गई है, कंघी नहीं की हुई, अब ये नहीं हुआ, कई ऐब अल्हम्दुलिल्लाह छुपते हैं स्काफ और अबाए में, इसमें कोई हर्ज नहीं। यही चीज़ आप अबाए की कर लीजिए। अब आप देखिए कि आप जीनत को छुपाते हैं, जैसे हमारे कपड़े हैं कोई भी रंग ले लीजिए, एक कोई कपड़ा आप पहनती हैं, प्रिंटेड भी हो सकते हैं, जॉर्जेट के हो सकते हैं, सॉफ्ट है ना, अब उस पर खूबसूरती है, औरत का हक है, अल्लाह ने मना नहीं किया, कोई गुनाह की बात नहीं है कि अगर आप प्योर रेशम के कपड़े पहनती हैं, आप जॉर्जेट पहनती हैं, कुछ भी पहनती हैं, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि बाहर जाते हुए वला युबदीन ज़ीनत होना। अब आपने इस जीनत को छुपाने के लिए अबाया पहना, आप उसको अबाया कह लें, आप उसको बुरका कह लें, आप उसको पहले दौर में शटल कॉक कह लें, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, सिंपल सी बात है, कवरिंग हो। लोग सवाल करते हैं अच्छा जी अब आया फिर हम डिज़ाइनर्स का पहन सकते हैं, अल्लाह के बंदो क्यों इस मसले पे अपने आप को उलझाते हो, तुम ये देखो मकसद क्या अबाए का कि ला युबदी न ज़ीनत होना। अब आपने ये प्रिंटेड सूट पहना हुआ है, इसके ऊपर अबाया पहन लिया और उस पर मैंने मोती सितारे लगा लिए, क्या ला युबदी न ज़ीनत होना अब ज़्यादा कि तब ज़्यादा। इतनी सी बात हम औरतों के दिमाग में क्यों नहीं आती, फिर वही कहूँगी कि इसके लिए तदरीजन अगर आप किसी चीज़ की आदत डालने के लिए शुरू में करते हैं, ना ये हराम है ना ये कोई, इसको मैं कहती हूँ, आप खुद को देखें कि आप कब तक बच्ची बनी रहेंगी। और मुझे सच्ची बता रही हूँ, मैं किसी पे नहीं बात कर रही, मैं अपने ऊपर हमेशा लेके बात करती हूँ, कि मुझे छिछोरपन लगता है, जिसको वो कहते हैं ना कि नॉन सेंस सी बात लगती है कि बुरके के ऊपर है। और ये हुआ क्यों, इसमें भी फिर एक एक्सट्रीम है, जब हमने बाहर वाले कपड़े इतने खूबसूरत किए तो फिर हम महफिलों में आके उतारते ही नहीं। 10,000 का बाया पहनना हुआ क्यों उतारे हैं, छोड़ो जोड़ा तो अंदर प्रिंटेड है, अब बाया पहन के बैठे रहते हैं। और वो बेचारी सिस्टर जो बेचारी अभी स्कार्फ लेने के भी मूड में नहीं है, वो आपको देखा हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, आपको गर्मी नहीं लगती, आपको चुभता नहीं, आपको ये नहीं। हम दूर करते हैं लोगों को, जिसने बाहर से घर आते ही अपने घर में आप आए, आप स्टे की हैसियत में फ़ौरन अबाया उतारें, उसको टांग दें। आप स्कूल में हैं कहीं भी, स्कूल में तो एक अलग बात है ना कि आपका यूनिफॉर्म का हिस्सा है, एक अलग बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ मस बात का, कि औरत के घर के बाहर और घर के अंदर के कपड़े में फ़र्क होना चाहिए। जब फ़र्क मिटता है ना, फिर वो अबाए खूबसूरत होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, फिर कहते हैं चलो और कुछ नहीं शादी में पहन के जा रहे, अब आए ज़रा फैंसी पहनते हैं। तो भाई आपने क्यों तकल्लुक किया, आजकल के स्काफ अबाए और जो लॉन्ग शर्ट चली उसमें फ़र्क क्या है? आपको पता है कि इन दिनों में मेरे लिए पिछले 2-4 महीने या साल के अंदर गाउन्स का रिवाज था, ऐसे ही है ना, गाउन चल रहे थे। अब आप बताइए किसी लड़की ने मिसाल है कि ब्लैक कलर का गाउन पहना और उस पर पतली सी पट्टी लगाई हुई है, अच्छा सन डिसेंट है, तो उसी तरह का एक अबाया आपने ऊपर भी पहन लिया उसमें और उस अबाया इस गाउन में फ़र्क क्या है? बात सिंपल है, फिर वही बात है, आप डिज़ाइनर पहने कुछ भी पहने आपकी जो हैसियत है। अब आप एक सस्ता सा अबाया लेते हैं जाके कहीं से, 200 रुपये का आ जाता है, लेकिन उस पर लाल रंग की कढ़ाई चढ़ी हुई है, सुरख रंग के मोती लगे हुए हैं और उसमें नग भी चमके हुए हैं, और आप पहन के आ गए, कोई बात नहीं मैंने सस्ता सा लिया 200 का। और एक कोई बंदा है वो 10,000 का अबाया लेके आता है, जिसके अंदर आप सोच सकते हैं कि जिस अबाये के अंदर डिसेंसी है, सॉफ्ट हो सकता है, कीमती है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दूसरों को भारे, पहन सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जब कपड़े डिज़ाइनर के पहन सकते हैं तो भाई अभी डिज़ाइनर का पहन सकते हैं, इशू ये है ही नहीं, आप कह लें कि ये नॉन इशू है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो चीज़ जीनत छुपाने के लिए थी उस पर जीनत होना और बात है। आप कपड़ा अच्छा ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं। अच्छा, ये अबाए भी पे कई किस्म के होते हैं, मैं मिसाल देती हूँ, आप देखें कि चूंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है ना, इसीलिए हम इस पर इतना वक्त भी लगा रहे हैं, ताकि जब ये आयतें गुजरें तो हम इसके बाद कहीं किनारे पे पहुँच चुके हों। आप देखिए कि एक है कि आप बाहर मर्दों में गए हैं, आप खुद ड्राइव करती हैं, आपको गैस भी डलवानी पड़ती है, रास्ते में आपने ग्रोसरी भी करनी है, कोई हक नहीं है आपको फैंसी अबाया पहनने का। दूसरी सूरत है कि आप अपने घर से गाड़ी में बैठी, आप अपनी दोस्त के घर गई, अब वो अबाया ऐसा है कि जिसमें नीचे कोई ऐसी किनारे पे चीज़ लगी है या ऐसी है कि आप उसको उस वक्त ग्लव्स पहन लेते हैं। मेरे पास से एक दो अबाये ऐसे हैं जो मैं अपने इन साइड पहनती हूँ, कभी मैं अगर बाहर पहनूँ आप मुझे खुद भी देख लीजिएगा, तो मैं अगर बाजू पे काम है तो ऊपर ग्लव पहनती हूँ बाहर जाऊँगी, और एक दो ऐसा है जिसको मैं मोड़ देती हूँ, यहाँ शायद आप मुझे देखें तो आप कहेंगे कि मैंने कढ़ाई वाला पहना है, लेकिन बाहर मैंने नहीं पहना होगा, या उसके ऊपर ग्लव्स होते हैं या उसको कढ़ाई को मोड़ के उसको प्लेन कर देते हैं। अब आप औरतों से निकली, औरतों में गई, उनके घर गई, ठीक है, देखिए हर बंदे को खुद भी तौकल है ना कि जो मैं पहन के निकला हूँ ये मैं कैसा लगूंगा। कई अबाए ऐसे हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि कभी भी बाहर पहन के जाना ही नहीं चाहिए, इतनी इलास्टिसिटी उसमें, इतनी लचक उसके अंदर है, चलते हुए एक एक जिस्म का हिस्सा दिखता है। तो बहरहाल इसके लिए वही बात है कि जितना तकवा आएगा, खूबसूरत अबाए हैं आप, क्या आप उसको ड्रेस बना लें फिर उसको अबाया ना कहें, शर्त एक है उसके ऊपर बाहर जाते हुए कुछ और पहने। सारा इस्लाम का जो मसला है ना वो ये है कि फैंसी ये अबाए बाहर नहीं आप पहन सकते, अगर आपने उसको ड्रेस बना लिया फिर ये ना कहें कि ये अबाया है, फिर उसको आप ड्रेस कहें उसके ऊपर एक और बने, और वाकई खूबसूरत अबाए होते हैं आप खरीद लें उनको एज अ ड्रेस पहने, जैसे अरब लोग भी तो लंबी शर्ट्स पहनते हैं ना, या आप भी मैक्सीज पहनती हैं, इस तरह पहन लें और आहिस्ता आहिस्ता खुद देखेंगे जितना शऊर बेदार होता है ना, अनकंफर्टेबल फील होता है, ज़रा सी चीज़ लगी हो कहीं अबाए पे या स्काफ पे तो खुद को बंदा बेवकूफ़ सोचता है। मुझे तो सच्ची बात बेवकूफ़ी लगती है कि मैं ये पहन के अब एयरपोर्ट पर जाऊँगी तो मैं लगूंगी क्या, लोग कहेंगे एक तो इसने इतना कुछ छुपाया हुआ है, ऊपर हमें ज़बरदस्ती दिखा रही है। तो इस तरह की कोशिशें करके इंसान जितना अपने आप को बचा ले। अब आगे लिस्ट है इसी आयत के अंदर, वला युबदीन ज़ीनत हुन्ना, और ना जाहिर करें अपनी जीनत को, इल्ला सिवाय, अब यहाँ 1, 2, 3 करके लिस्ट बना लीजिए। नंबर 1, लीब उलती हिन्ना, अपने शोहरों के लिए। सबसे ज़्यादा हक़ किसी को अगर है तो वो शोहर को है। शोहर को ज़ीनत दिखा सकते हैं, और उसमें फिर ज़ीनत जिस्म की भी है, लिबास की भी है, कपड़ों की, ज्वेलरी के, उनको दिखाएं जिनसे कुछ मिलना भी है, जिनकी नज़रों को महफूज भी रखना है। एक औरत अगर अपने शोहर के लिए सिर्फ इस्तेमाल करती है ऐसी कोई चीज़, तो वो उसके लिए सवाब की बात है, वो उसका जिहाद है, वो उसके लिए अजर की बात है। खुशबू भी लगा सकते हैं, जेवर भी पहन सकते हैं, आप मेकअप भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनिए, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी सूरत है औ आबा इहिन्ना, बापों के सामने। क्या बाप के सामने उतनी जीनत खोल सकते हैं जितनी शोहर के सामने खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। अब यहाँ वो ऊपर वाली बात आएगी, लामा ज़हरा मिन्हा, हाथ, वो जो नबी सल्लम ने हज़रत अस्मा को कहा था ना, कलाइयाँ, चेहरा और पाँव, ये आप महरमों के सामने खोलें। कल भी एक आया हुआ था मैसेज के औरत महरमों के सामने कितना खोले, तो उसका यही जवाब है, बाहया लिबास हो, ढीले कपड़े हों, बाप के सामने आप चेहरा खोल लें, मेकअप किया हुआ है कोई हरज नहीं, ज्वेलरी पहनी है कोई हरज नहीं, लेकिन क्या आप अपने बाप को अपने सी थ्रू कपड़े दिखा सकते हैं या उसके सामने? हर एक को इसकी लिमिट पता है। फिर आप देखिए, आबाई हिन्ना में बाप भी है, नाना भी है, दादा भी है, बापों के ऊपर बाप। फिर आबाई बूल अति हिन्ना, शोहरों के बाप, ससुर। और इसमें भी नोट कर लीजिए, ये बहुत कम लोगों को बताता है कि ससुर से जिस तरह पर्दा नहीं है ना, इसी तरह शोहर के बाप यानी दादा ससुर, नाना ससुर, आगे से जो उनके ससुर रिश्ते चलते हैं वो भी इसी में आते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि जो ससुर है ना, यानी जिसको हम अपनी ज़ुबान में इस वक्त ससुर कह रहे हैं, ये भी हमेशा का महरम है। आज आपकी शादी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ससुर वो ससुर है, कल दो में से एक चीज़ हो सकती है, खुदा ना खास्ता तलाक हो जाए आपकी इस मर्ज़ से, वो ससुर क़यामत तक के लिए ससुर है, उनसे आपका पर्दा भी नहीं, निकाह भी नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि बेवगी, शोहर फौत हो जाए तो ससुर उसके बाद भी रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा देखिए, औ अबनाई हिन्ना, अपने बेटे। अब बेटे कौन से हैं इसमें? सगे बेटे, अख्याफी और दूसरे बेटे, यानी इसमें सौतेले बेटे भी आ जाते हैं। अब अबनाई हिन्ना, और अगर आगे देख लीजिए, औ अबनाई बुउलति हिन्ना, शोहरों के बेटे, ये कौन है? सौतेले बेटे। जिस मर्द के साथ ताल्लुक कायम हो जाए उसके बच्चे भी फिर औरत के लिए महरम बन जाते हैं। फिर बेटों में फिर पोते भी हैं, नवासे भी हैं। बाप कहेंगे ना तो ऊपर के बाप, दादा नाना, और बेटा कहेंगे ना तो नीचे बेटा, पोता, नवासा, वो सब आ जाएंगे। औ इख्वानी हिन्ना, अपने भाई, कौन से भाई? सगे भी और सौतेले भी और रजाई भाई भी, दूध शरीक। औ बनी इख्वानी हिन्ना, या बेटे अपनी भाइयों के, क्या कहते हैं इनको? भतीजे, ठीक है, फूफी। औ बनी अखवाती हिन्ना, बहनों के बेटे यानी भांजे। औ निसाई हिन्ना, अपने मेलजोल की औरतें। अब इसकी दो तफसीरें हैं, हिन्ना से मुराद कुछ लोग कहते हैं मुसलमान औरतें, वो फिर कहते हैं कि गैर मुस्लिम औरत से भी पर्दा होगा, लेकिन यहाँ इससे मुराद है शरीफ औरतें। मुसलमान औरत शरीफ है तो उसके सामने भी औरत जाएगी, जैसे हम आम तौर पर जाते आते हैं, और अगर कोई गैर मुस्लिम शरीफ है, ख़ानदानी है, उसके सामने जाएंगे। अब एक औरत है मुसलमान लेकिन उसके ताल्लुक मर्दों से है, प्रोस्टिट्यूशन कराती है, तो उस औरत से भी पर्दा करेंगे। यही चीज़ नॉन मुस्लिम के साथ भी होगी। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या वो जो अपने लौंडी और ग़ुलाम हो। आज ये इशू नहीं है, और जब कभी होगा तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें मुलाद ग़ुलाम और लौंडी है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात की ज़रूरत ही नहीं। अभी ताबईन गैरी उलिल इरबा, या ज़ेरे दस्त मर्द जो ख्वाहिश नहीं रखते औरतों की। इरबा का लफ्ज़ इधर आया, यानी वो मर्द जिसके अंदर औरत की ख्वाहिश ना हो, जिसको आप इंतहाई हाजत वाले कह सकते हैं, मर्द ना होना। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, मसलन के उम्र की कसरत हो चुकी है, या शुरू से ये ख्वाहिश नहीं थी, या हालात के बोझ ने इनको दबा दिया। ये वो लोग हैं जिनको हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना तुफैली, ये भाई इतना सा आया था हमारे घर में, अरे बूढ़ा हो गया बाबा, ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं रखते। तो ऐसे ग़ुलामों और ऐसे घर के जो लोग हैं उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें हमारे ड्राइवर, हमारे खानसामा और हमारे घर के मोटे हट्टे कट्टे मुलाजिम नहीं आते, यहाँ तो खैर मिलता ही नहीं है। पाकिस्तान में देखें तो यकीन करेंगे लोगों के घरों में मर्द खानसामे हैं, पूरे पूरे शेफ़ हैं। अभी मेरा दर्स था, आखिरी दर्स जब मैं गई हूँ तो एक अभी थोड़े दिन के लिए, तो इधर से लेके वहाँ तक टेबल खाने की सजी हुई थी, तो मैंने कहा आपने ये क्या किया? कहती मैंने नहीं किया, खानसामों ने किया, और वो मर्द फिर रहे होते हैं माशाल्लाह, 20-20 डिशें खाने की बनी होती हैं। कहती जब मैं दुनिया के लिए करती हूँ इतना, तो मैं दीन के लिए क्यों ना करूँ, मैंने आपकी मोहब्बत में किया। तो वो खाने देख के लग रहा था ये कोई आम बंदा बनाया नहीं। तो वो होटल्स के शेफ्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अगर कोई रखना चाहता है पर्दे की अदों में रखे, फिर वो बस किचन और उसके बाद। अब आप उनको बेडरूमों में ला रहे हैं, ट्रे ला रहे हैं, खतरनाक है। कई कई ऐसे मामलात बिगड़ जाते हैं। बहरहाल फिर आगे देखिए, वित्तफ़िल्लज़ीन लम यस्ख़रू अला औरात निसा, या वो बच्चे जो अभी औरतों की छुपी हुई बातों से आगाह नहीं हुए। दूसरे लफ्ज़ों में, मैं आसान लफ्ज़ों में बोल दूँ, जिनको अभी स्कूलों में सेक्स एजुकेशन नहीं मिली। ये भी एक रोग है आज के दौर का। अच्छे काम को बुरे रंग में कर दें तो वो काम अच्छा नहीं रहता। वक्त से पहले, बेमौका, ना उनको अलिफ पता ना बे पता, और उनको आप जाके सारी बॉडी खोल के दिखा दें और जाके उनको वो दिखाएं, वो बच्चे कई सवाल आता के माँ बाप से करते हैं, और ये तक देखा गया कि फिर वो उसको प्रैक्टिकल भी करने की कोशिशें करते हैं। ये भी एक नासूर है जिसने आज के दौर पे बहुत ही ज़्यादा लोगों को रखा। तो जिस उम्र में लड़कों के अंदर ऐसे जज्बात शुरू होने लगे, फिर उनसे भी बचने की ज़रूरत है। और इसकी निशानियाँ भी होती हैं, बाल आ जाते हैं चेहरे पे और आवाज़ बदलने लगती है। यहाँ तक पर्दे की लिस्ट ख़त्म हुई। अब मैं आपसे चंद सवाल करती हूँ, क्या इस लिस्ट में मंगेतर है, कजन्स हैं, नंदों के बच्चे हैं, जेठ और देवर के बच्चे हैं? तो फिर हम क्या कहते हैं, ये तो घर के बच्चे हैं। हमारा कल्चर क्या है कि जैसे लोग खाला की इज्जत करते हैं ना, इस तरह मुमानी की भी करते हैं, जैसे पुप्पो की करते हैं ऐसे चची की भी करते हैं। तो क्या मुमानी और जो चची है वो महरम है? नहीं महरम। कल अल्लाह ना करे चचा का इंतकाल हो जाए या मामू मुमानी को तलाक दे दें, तो शादी हो सकती है, और हुई, ऐसे मामले हैं। आपके हम तो गए थे तो ये तो बच्चा था, इसका तो मैं मुंह धुलाती थी। आप धुला सकती हैं आप अपने देवर का मुंह? ये भी एक ढकोसला है हमारे यहाँ। ये तो मुझे भाभी नहीं माँ समझता है, जो मर्जी कर लें। इस पर मिसाल हज़रत अनस की है। 10 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के घर गए थे, और जब पर्दे की आयतें उतरी 5 हिजरी में, तो 15 साल के हो गए, और एकदम उनको रोक दिया गया। तो परेशान हो गए कि शायद मैंने गलत काम कर दिया। कहा नहीं अनस, पर्दे की आयतें आ गई हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे सूरत अल अज़ाब में। तो जब घर का बच्चा वहाँ पर्दा कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? इस पे कड़वा घूंट भरना पड़ता है। और इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपको पता कौन होती है? सासें। ये तो फूट डालने आ गई, ये तो मेरे बेटों को लग कर दी, इस पर्दे की वजह से मेरे बेटे घर में आते नहीं। आए भाई, आपको कौन रोकता है? इसके लिए फिर आपको अपना इखलाक और अच्छा करना चाहिए। दावत पकाएं, खिलाएं, पाबंदियों में रहकर अपने इखलाक से बताएं कि आप दूसरों से अलग नहीं हैं। मंगेतर इसमें नहीं है। फ्यूंसी को आज सर्टिफिकेट मिल चुका है कि वो तो अब बस हो गया। याद रखिए, इस्लाम में मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं है, सिवाय एक वादे के। ना इसका कोई कफ़ारा है, ना इसका कोई खमियाजा है। हो भी सकती है आपकी शादी, वहाँ नहीं भी हो सकती। लड़कियों की एक आदत होती है कि वो फ्यूंसी के मामले में टू पिकी हो जाती है, ख्वाबों में भी आ रहा है, मंगनी छूट जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की का होता है, लड़के तो बदल जाते हैं। कभी ऐसे रिश्तों में आगे बढ़ के नहीं लाना चाहिए। एक छोटी सी बात है, मैं चाहती हूँ कि ज़रूरत के तहत बात करूँ। बस दफ़ा होता क्या है, और वो क्या है कि आप मंगनी नहीं करते, निकाह कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि इसका निकाह हुआ है। निकाह में और शादी में आप और मैं क्या फ़र्क समझते हैं? सिंपल सी बात है, रुखसती किस चीज़ का नाम है कि शौहर और बीवी इतना वक्त इकट्ठे हो जाएं जिसमें ताल्लुक कायम हो सके। अगर आपने निकाह किया बच्ची का, बात कर ले, देख लिया किसी के साथ, अकेले फिर भी नहीं हो सकते, फिर आप अनाउंस करें कि रुखसती हो गई। आपने सूरत बकरा में क्या पढ़ा था? आपने 4 किस्म के मेहर पढ़े थे ना। खुदा न खास्ता निकाह हुआ हो और तलाक हो जाए या शौहर फौत हो जाए, तो रुखसती होने या सिर्फ निकाह के बीच की इद्दत का फ़र्क है कि नहीं फ़र्क? हक मेहर का फ़र्क है कि नहीं फ़र्क? किससे पूछेंगे, लड़की से कि लड़के से? ये भी अब एक अजीब शैतान ने हमारे लिए धोखा कर दिया। ये सिर्फ एक अब दुनियादारी रह गई कि हमने रुखसती करनी है। अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह हुआ तो रुखसती नहीं हुई। अगर निकाह हुआ अलाउड है, मियाँ बीवी बन के वो रह सकते हैं, लेकिन फिर अनाउंस करना पड़ेगा। कल बच्चे का अल्लाह ना कर इंतकाल हो जाए, तो लड़की से आके पूछेंगे अच्छा अकेले मिलते थे तो किस तरह के मिलते थे, तो वो रुखसती हो गई। अगर कोई मियाँ बीवी निकाह के बाद अकेले कहीं चले भी गए ना, तो रुखसती हो गई है। बाकी फिर बस जो मर्जी आप उसको कह लें। समझ आ गई ये बात, फ़र्क समझ आए? क्योंकि अब ये भी एक बहुत बड़ा वेस्ट में इशू है। मेरा हले 5-5, 6-6 साल निकाह करके छोड़ देते, ये तो और भी ज्यादती है। देखिए, आप मुझे कहें कि भाई आप पढ़ाती रहें, अभी खाना नहीं मिलेगा, तो मैं मुतमईन हूँ। और आप ले के खाना इधर रख दें, पक भी गया लेकिन मुझे कि अपने खाना नहीं है, ये तो आप जुल्म करते हैं और भी ज़्यादा। तो ये वो फंदे हैं जिसके अंदर आज हमारी सोसाइटी फंसी हुई है। बहरहाल अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ये सारी बातें करके आखिरी अब हुक्म इसमें क्या आ रहा है, वला यदरिब नबी अर्जुली हिन्ना, अपने पाँव ना मारा करें, पाँव ना मारें, ताकि लियो लमा युफी न मिनजी नती हिन्ना, ताकि मालूम हो जाए जो कुछ वो छुपाती हैं अपनी जीनत में से। पाँव का जेवर, बजने वाली चीज़, यानी औरत की चाल का तरीका भी बता दिया कि पाँव मार मार के ना चले। तो टैप डांसिंग क्या है फिर, और कैट वॉक क्या है, और पाँव के घुंघरू क्या हैं? अल्लाह कहते हैं छुपी हुई चीज़ जाहिर ना हो जाए, इसी में फिर उलमा कहते हैं हील वाली जूतियाँ टुक टुक टुक। और इसी से वो दलील लेते हैं कि जब पाँव की आवाज़ औरत की आती है तो मर्द के दिल में कुछ होता है, तो उसकी खुशबू भी तो एक किस्म की पुकार है ना। मर्द काम कर रहे होते हैं, एकदम खुशबू आती है तो उठ के देखते नहीं है क्या हो गया, एडवर्टाइज तो आप देखते ही होंगे ना। तो खुशबू लगा के जाना, मर्दों में से गुजरना, ऐसे जेवरात पहनना जिसकी आवाज़ें आएँ, छन छन करना, ये सब इसमें नहीं है। अब ये सब सुन के तो दम ही घुटता है, हाय इतना कुछ खराबियाँ, इतना मसला है। कानीवतूबु इलल्लाहि जमीया, तुम सब तौबा करो अल्लाह के हजूर। अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालो, अपने अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश करके अपने ईमान को रिवाइज करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब हम देखिए ये माशरे का वो माहौल है जो अमल करें तो बहुत खूबसूरत प्रोटेक्टिंग, और आप इसको सजा समझें तो खराबी है। आज इस लफ्ज़ को बहुत ही बदनाम किया गया, चादर और चार दीवारी, औरत को कैद कर दो, औरत को बांध दो, उसको ढाटा बांध दो, उसके मुंह पे निकाब डाल दो, और शटल कॉक के आगे वो जो जाली आंखों की होती है उसको केज करके दिखाते हैं, देखो पिंजरों में बांधा हुआ इन्होंने औरतों को, और न जाने क्या कुछ। तो बात समझिएगा आप, देखिए कि एक लफ्ज़ है हिफाजत, लिखे प्रोटेक्शन, और एक है कैद, प्रिजन। ज़रा दोनों को टैली कीजिए। हिफाजत जब किसी की जाती है, किसकी की जाती है? कीमती चीज़ की, वैल्यूएबल चीज़ की। जब हिफाजत किसी की जाती है तो उसके साथ भी बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उसकी प्रोटेक्शन होती है आगे या पीछे। दूसरा लफ्ज़ है कैद, जब किसी को कैद किया जाता है तो वहाँ भी क्या होती है उसके इर्द गिर्द? कैद किसको करते हैं? जिसने गलत काम किया, क्रिमिनल, गुनाहगार, उसके भी मुहाफिज हैं, उसके पास भी पुलिस है। औरत खुद सोचेगी, अगर वो अपने आप को कीमती समझती है तो कहेगी इस्लाम इज़ प्रोटेक्टिंग मी, और अगर वो खुद को मुजरिम समझती है तो कहेगी ये तो एक प्रिजन है मेरे लिए। इंशाल्लाह इस मज़मून को आगे लेकर चलेंगे। ये सवाल आगे ताज़ा जी, अगर हम किसी का बच्चा लेकर पालते हैं, अपना बच्चा बनाकर, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या वो इस माँ के लिए महरम होगा या गैर महरम? तो आप देखिए कि बेहतरीन तरीका क्या होता है, अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो वो बच्चा पालना चाहते हैं तो अपने किसी महरम का ले लें। भाई का बेटा लेंगे तो भी महरम होगा, बेटी लेंगे तो भी, और इसी तरह से बहन का भी ले सकते हैं। अगर ससुराली रिश्तों में से नन का या जेठ तेवर का लेंगे तो वो आपके शौहर के लिए सुदगी होगी। अगर ससुराली रिश्तों से लें, ठीक है, तो बेटी लें, क्यों भला? आपके शौहर के लिए वो महरम हो गई, आपको कोई मसला ही नहीं हुआ। अगर आप अपने मैके में से किसी का बच्चा लेते हैं तो बेटा लें, वो किसके लिए होगा? वो भी आप, यानी इस तरह से इंटरचेंज कर लीजिए कि शौहर बीवी को फ़र्क ना पड़े। दूसरी सूरत इसमें एक और भी है जो अल्लाह की तरफ से एक मिरेकल ही है मेरा ख्याल है, और ये रिसेंटली अभी भी मुझे किसी ने बताया कैसा हुआ, कि जब भी किसी का न्यू बॉर्न बेबी लें तो उसको ट्राई करवाएँ तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के हुक्म से दूध आ जाता है, तो वो आपका दूध शरीक बच्चा बनता है। अभी किसी की बात सुनी थी कि उन्होंने किसी का बाहर से बच्चा ले कर अडॉप्ट किया, और डॉक्टर्स कुछ इस तरह आजकल की कुछ प्रिकॉशंस देते भी हैं कि अगर कोई सप्लीमेंट्स हैं, कुछ दवाइयां खाएं तो औरतों को दूध आ जाता है बगैर बच्चा पैदा किए। लेकिन वो कहती हैं कि बगैर बच्चा पैदा किए, यानी जब वो बच्चा आया, रोया, उसको दूध लगाया, एक दो बार कोशिश की तो माँ को दूध आ गया, ये लक ही देना है, तब वो उनका दूध शरीक बच्चा है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर बड़ा होने पर ज़ाहरी बात है कि वो महरम नहीं है। ठीक है।